हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 16। किम कर्म किमकर्मेति कव्योऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाए वह पूर्ववर्ती प्रामाणिक भक्तों के आदर्श के अनुसार होना चाहिए। इसका निर्देश 15वें श्लोक में किया गया है। ऐसा कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। यानी कि जिस प्रकार से अपने कर्मों को भगवान कृष्ण को समर्पित पूर्ववर्ती आचार्यों ने किया है, पूर्ववर्ती भक्तों ने किया है, उसी के अनुसार हमें चलना चाहिए। भले ही हम लोग ये ना समझ पाए किस प्रकार से हम कर्म बंधन में फंसे थे, लेकिन कर्म बंधन को काटने का तरीका हमारे आचार्यों ने बताया है, और वो तरीका है कृष्ण भावना भावित कर्म करना। जैसे कोई मलेरिया की बीमारी हो जाए तो ये जान पाना कि कौन से मच्छर ने काटा था, कब काटा था, कहाँ काटा था, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन मलेरिया का इलाज एक डॉक्टर के मार्गदर्शन में हम जब दवा खाते हैं तो बड़ी आसानी से हम कर पाते हैं। यही बात हमको समझ में आनी चाहिए प्रभुपाद की तात्पर्य से, कि कैसे अपने कर्म बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं। इसको जानने के लिए हमें पूर्ववर्ती आचार्यों के मार्ग का अनुगमन करना होगा, और तरीक उसका सेंस ये है कि उसे अपने कर्म को कृष्ण को समर्पित करना सीखना होगा। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रामाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है जो गुरु परंपरा में हो, जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है। ये क्यों आवश्यक है? एक बार एक भक्त ने बोला कि अपनी इंद्रियों से कृष्ण की सेवा करने का अर्थ क्या है। तो क्योंकि हमने श्रील प्रभुपाद से सुना है तो इसलिए इसका अर्थ बड़ा स्पष्ट होता है, लेकिन मैं उनकी बात समझ पा रहा था क्योंकि वो भक्ति की लाइन में एकदम नए हैं, तो उनको क्लियर नहीं हो रहा था कि हम कृष्ण की सेवा करें कैसे, भगवान हैं कहाँ जहाँ जिससे उनकी सेवा करें। लेकिन प्रभुपाद जी ने हमको सिखाया कैसे भगवान के विग्रह भगवान से अभिन्न हैं और उसके द्वारा हम उनकी सेवा कर सकते हैं, या उनके बारे में हम बोल करके, उनका नाम श्रवण करके, उनका प्रसाद खा करके, इस प्रकार से उनके हम सेवा करते हैं। तो ये चीज़ लोगों के लिए शुरुआत में बहुत मुश्किल होती है, स्पेशली भौतिकतावादी लोगों के लिए। लेकिन जब बार बार सुनते हैं भगवद गीता से या भक्तों के मुख से, तब उनको समझ में आने लगता है कि कृष्ण की सेवा का अर्थ क्या है। और इसके लिए हमें गुरु परंपरा में ट्रेनिंग या हमारा प्रशिक्षण होना बहुत आवश्यक है। कृष्ण भावनामृत पद्धति का उपदेश सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया गया, जिन्होंने इसे अपने पुत्र मनु से कहा, मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा, और यह पद्धति तब से इस पृथ्वी पर चली आ रही है। अतः परंपरा के पूर्ववर्ती अधिकारियों के पदचिन्हों का अनुसरण करना आवश्यक है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भावनामृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने स्वयं ही अर्जुन को कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने का निश्चय किया। अर्जुन को साक्षात भगवान ने शिक्षा दी, अतः जो भी अर्जुन के पदचिन्हों पर चलेगा वह कभी मोहग्रस्त नहीं होगा। तो मोह है क्या? मोह ये है कि व्यक्ति ये सोचेगा कि भगवान कृष्ण भगवान नहीं है अपितु तो एक सामान्य व्यक्ति हैं, और अब वो मर चुके हैं तो उनकी सेवा का अर्थ क्या हुआ। लेकिन व्यक्ति जब भगवान की बातों को एज इट इज स्वीकार करेगा, जैसे कि भगवान गीता में बता रहे हैं, बहुनी में वतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, मेरे तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, तान्यहम वेद सर्वाणि नत्थम वितत परंतपा, मुझे वो सारे याद हैं लेकिन तुमको याद नहीं है। तो इस प्रकार से जब भगवद गीता को हम श्रद्धा से गुरु परंपरा में स्वीकार करते हैं तो हम ये समझ पाते हैं कि भगवान और हम में अंतर क्या है। और ऐसा नहीं है कि इसमें भगवान नहीं है, भगवान हर परिस्थिति में है और हर परिस्थिति में हमारी सेवा को स्वीकार कर सकते हैं, और उन हर परिस्थिति में हम उनकी सेवा भी कर सकते हैं। तो ये व्यक्ति, इस ज्ञान को वही व्यक्ति धारण कर सकता है जिसने भगवान के बारे में परंपरा में ज्ञान को स्वीकार किया हो भगवद गीता से। ये बहुत महत्वपूर्ण है, और नहीं तो प्राय जो भगवद गीता के टीकाकार होते हैं वो भगवान को एक मनुष्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं, श्रेष्ठ मनुष्य के रूप में प्रस्तुत करें भले ही, लेकिन मनुष्य के रूप में ही प्रस्तुत करते हैं। इस कारण से व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं जाता है गीता पढ़ने के बावजूद भी। कहा जाता है कि अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्म पथ का निर्णय नहीं किया जा सकता। वस्तुतः धर्म को केवल भगवान ही निश्चित कर सकते हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। अपूर्ण चिंतन द्वारा कोई किसी धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चारों कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव, गोस्वामी, यमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पदचिन्हों का अनुसरण करें। केवल मानसिक चिंतन द्वारा ही निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है। अतः भगवान अपने भक्तों पर अहेतु की कृपावश स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। केवल कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भवबंधन से उबार सकता है। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इन 12 लोगों के बारे में क्यों बताया गया है, क्योंकि ये 12 लोग भागवत धर्म के बारे में जानते हैं। भागवत धर्म का अर्थ होता है कि वो क्रियाएं, वो कर्तव्य जो जीवात्मा के भगवान के प्रति होते हैं, और इसके बारे में बड़े बड़े ऋषि मुनि तक भी नहीं जानते हैं। इस चीज़ को श्रीमद् भागवत में बताया गया है 6 स्कंद में। तो क्यों नहीं जानते हैं? तो हम इसका रहस्य यही समझ रहे हैं, क्योंकि भगवान से आने वाली परंपरा में उस ज्ञान को स्वीकार नहीं किया है। कोई व्यक्ति कितना भी उन्नत बुद्धि का हो, वो ये अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं जान सकता है कि भगवान कौन है, क्योंकि भगवान सभी के स्रोत हैं। जैसे मान लीजिए मैं जीवन में कितना भी बुद्धिमान हूँ, अगर मेरी माँ मुझको नहीं बताती है कि मेरे पिता कौन है, तो कितनी भी बुद्धि लगा लूँ मैं मालूम नहीं कर सकता निश्चित रूप से कि मेरे पिताजी कौन है, क्योंकि मेरा जन्म उनके बाद में हुआ है। उसी प्रकार से जितनी भी जीवात्माएं यहाँ पे हैं, उन सब का जो प्रकटीकरण है, जो शरीर उनको मिले हैं, उसके स्रोत भगवान ही हैं। सबकी उत्पत्ति भगवान से हुई है, इसलिए जब तक भगवान अपने बारे में स्वयं नहीं बताते, हम समझ नहीं सकते। और जैसे हम अपने पिता के बारे में श्रद्धा से सुनते हैं अपनी माँ से और स्वीकार कर लेते हैं, और अगर हम स्वीकार कर लेते हैं तो वो ज्ञान बिल्कुल परफेक्ट है, उसी प्रकार से हम भगवान की वाणी को अगर भगवद्गीता से स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारा ये ज्ञान कि भगवान कौन है बहुत स्पष्ट हो जाता है, बिल्कुल सही रहता है, और वह कृष्ण भगवान की कृष्ण भगवान है। और हमारा सच्चा धर्म क्या है? उनकी प्रेममय सेवा में लगे रहना। तो ये बात समाज में लोगों को बिल्कुल पता नहीं है। नाते विदु स्वार्थ गते भी विष्णु, कि हम सबका स्व अर्थ जो है वो भगवान विष्णु है, ये लोगों को पता नहीं है। और इस रहस्य को हम भगवद्गीता से जान सकते हैं यदि हम भगवद्गीता को परंपरा में स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट श्लोक को देखेंगे। कर्मणो हि अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है, यानी कि थोड़ा सा बुद्धि लगानी पड़ेगी। तात्पर्य, यदि कोई सचमुच ही भवबंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। कर्मबंधन के कारण ही हम इस जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। तो जैसे कोई बीमारी होती है तो उस बीमारी के कारण और उसके निवारण के बारे में हम ठीक से समझते हैं, तभी बीमारी को हम ठीक कर पाते हैं। ऐसे ही कर्मबंधन से हम कैसे मुक्त हों, उसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ेगा। कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। दूसरे शब्दों में, जिसने ये भली बात ही समझ लिया है, वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्यदास है, और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। संपूर्ण भगवद्गीता का यही लक्ष्य है। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म है। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है और उनसे रहस्य को समझना होता है। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। देखिए, कर्म वो होता है जो वैदिक ग्रंथों के द्वारा दिया जाता है हमको, लेकिन उसका उद्देश्य यह है कि अपनी हमारी इंद्रिय तृप्ति हो, लेकिन वैदिक नियमों का पालन करने के कारण हमारा हृदय का शुद्धिकरण धीरे धीरे होता है। उदाहरण के लिए विवाह, तो विवाह की कार्य यह है, वो अंततोगत्व है, इसमें इंद्रिय तृप्ति होती है, लेकिन जब वेदों के अनुसार व्यक्ति करता है तो धीरे धीरे उसके हृदय का शुद्धिकरण भी होता है। तो यह हो गया कर्म। या फिर और कोई मान लीजिए स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहता है तो वो यज्ञ करता है, तो कर्म है उसमें, और उस कर्म के द्वारा उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है।
लेकिन इस स्वर्ग की प्राप्ति में और वहां पे प्राप्त होने वाले इंद्र तृप्ति में भी, क्योंकि उसने क्रिया यज्ञ की क्रिया करी है, तो धीरे धीरे उसके हृदय का शुद्धिकरण होगा। विकर्म क्या होता है? विकर्म व्यक्ति वेदों की अवमानना करता है और केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है। कर्म में और विकर्म में सामान्य बात इंद्रिय तृप्ति है, दोनों ही कार्य इंद्रिय तृप्ति के लिए, भोग के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन एक में वेदों की आज्ञा को माना जा रहा है, तो इससे व्यक्ति को पुण्य होता है और वो ऊपरी ऊपर के लोकों में जाता है, और विकर्म में व्यक्ति पाप करता है और इंद्रिय भोग करता है, उससे वो निम्न लोकों में जाता है, नरकीय जीवन भोगता है। लेकिन अकर्म क्या होता है? अकर्म का मतलब है व्यक्ति कार्य तो कर रहा है लेकिन उसको कर्म फल नहीं लग रहा है, और यहीं पे लोग मोहित हो जाते हैं। विकर्म समझ में आ जाता है और कर्म भी समझ में आ जाता है, लेकिन अकर्म नहीं समझ पाते। कैसे व्यक्ति भक्ति करने से, भक्ति में कार्य करने से कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, इस बात को भगवान गीता में बताते हैं। यद करोषि यद अशनासि यद जुहोषि यद दधासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्म दर्पणम्। आप जो कुछ भी कर रहे हो, जो भी तपस्या करते हो, जो भी दान देते हो, कुछ भी करते हो, आप मुझको समर्पित करो, और अगर ऐसा करोगे तो शुभ और अशुभ दोनों कर्म के फलों से मुक्त होकर के तुम मुझके मेरे पास आ जाओगे। शुभाशुभ फलैरेव मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्त माम उपैशसी। तो अपने अगर हर कर्म को व्यक्ति भगवान को समर्पित करता है, भगवान के लिए करता है, तो फिर वो निश्चित रूप से भागवत धर्म का अनुशीलन कर रहा है, और ऐसे जरूर लग सकता है बाह्य दृष्टि से कि ये व्यक्ति भी सामान्य बद्धात्मा की तरह कार्य कर रहा है, लेकिन क्योंकि उसके कार्य कृष्ण भावना भावित होते हैं, कृष्ण संबंधित होते हैं, इसलिए वो क्रमशः कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो ये बात बुद्धिमान से बुद्धिमान लोगों को भी समझ में नहीं आती है कि किस प्रकार से एक भक्त एक समान व्यक्ति की तरह कार्य करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जैसे दुनिया में सब लोग खाना खाते हैं और भक्त लोग भी खाना खाते हैं, लेकिन खाना नहीं खाते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो अगर वीडियो बनाया जाए एक व्यक्ति का जो भोग खा रहा है और एक व्यक्ति का जो प्रसाद खा रहा है, तो बाहर से देखने में एक ही बात लगेगी, लेकिन भगवान इस बात को बताते हैं, हमने चर्चा कर चुके हैं। यज्ञ शिष्टा सिनो संतो मुच्यन्ते सर्व के विषय भुंजते ते तो गम त्वघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। जो भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं वो सारे पापों से कलबुषों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति भोग खा रहा है, जो भगवान को अर्पित नहीं होता है, तो हर कौर के संग इस जगत से और बंधता चला जाता है। तो आप देख सकते हो कि क्रिया वही रहती है बाह्य दृष्टि से, लेकिन अंतर बहुत पड़ जाता है। तो ये बात प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्तों के माध्यम से इस रहस्य को नहीं समझता है, भक्ति के रहस्य को, तो व्यक्ति मोहग्रस्त रहेगा और भगवान के प्रति जो हमारा संबंध है उसको समझने में वो गलती करेगा। ठीक है। कर्मण्य कर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृतस्न कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। तो आपको अगर याद हो तो हमने यही लास्ट पिछले श्लोक में यही चर्चा कर रहे थे कि जो भक्त है वो जब देखते हैं कि सब ये इस कर्म का संबंध भगवान से है, तो बड़े उत्साह के संग कर्म करते हैं, उन्हें कोई डर नहीं होता है कर्म बंधन का, जो कि बाहर के लोगों के लिए हो सकता है। लेकिन अगर भगवान से संबंधित नहीं है तो भक्त फिर उस कार्य को करने में बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाते हैं। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है, ये मैंने अभी चर्चा किया था। इसको एक अच्छे उदाहरण से आप समझ लीजिए। कोई एक जवान है और वो युद्ध में गोली चलाता है, लोगों को मारता है, अपराधियों को मारता है, या कह सकते हैं कि उग्रवादियों को मार रहा है, तो उसके लिए उसको मेडल मिलता है। लेकिन अगर घर आकर के एक व्यक्ति को भी गोली मार दे अपने स्वार्थ के लिए, तो उसको जेल हो जाएगी। तो उसी प्रकार से भक्त इस जगत में बहुत सारे कार्य कर सकते हैं जो बाह्य दृष्टि से बंधन करने वाले होंगे, लेकिन अगर वो भगवान के संबंध में है तो उन्हें कोई भी कर्म नहीं लगता है। ये बहुत बड़ा रहस्य है। और अगर कोई व्यक्ति अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए थोड़ा सा भी कार्य करता है, तो निश्चित रूप से उसको बंधन प्राप्त होता है। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। फलस्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है, यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म करना बंद कर देता है कि कर्म फल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक ना हो। किंतु सगुणवादी अपनी इस स्थिति को से भली भांति परिचित रहता है कि वे भगवान का नित्य दास है, अतः वे अपने आप को कृष्ण भावनामृत कार्यों में तत्पर रखता है। क्योंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः इस सेवा करने से उसे देव सुख प्राप्त होता है। जो इस विधि में लगे रहते हैं वे व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं। कृष्ण के प्रति उनका नित्य दास्य भाव उसे सभी प्रकार के कर्म फल से मुक्त करता है। पहले तो आप श्लोक के अनुवाद को देखिएगा, जो कर्म में अकर्म देखता है, यानी कि जो व्यक्ति समझ रहा है कि वो कृष्ण का नित्य दास है, तो वो जिन कर्मों को कर रहा है, जो कर्म कृष्ण के संबंध में है, उनमें वो अकर्म देखता है, यानी वो समझता है कि इन कार्यों को करने से मुझे कोई बंधन नहीं लग रहा। और अकर्म में कर्म देखता है, मतलब अकर्म यानी कि भगवान श्री कृष्ण की अकर्म, मतलब जो व्यक्ति, दो तरह से इसको अर्थ ले सकते हैं, अकर्म में कर्म देखता है मतलब जो व्यक्ति कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति किस प्रकार से कर्म बंधन में फंस रहा है, ये एक भक्त देखता है। दूसरा अर्थ इसका ये भी ले सकते हैं कि अकर्म में कर्म देखता है मतलब अकर्म का मतलब हो गया कि कर्म फल के बिना, यानी कि कृष्ण की भक्ति पूर्वक कर्म, तो उसी में अपने कर्म को देखता है, यानी उसी उसी कर्म को में यही कार्य करना है, कृष्ण की सेवा करनी है, बस यही उसका भाव रहता है। और कोई सेवा, और किसी की सेवा या और कोई संबंध के अनुसार सेवा करने में इसकी कोई रुचि नहीं होती है। जैसे उदाहरण के लिए, आप इस जगत में हॉस्पिटल खोल सकते हैं और ये पुण्य कार्य है, लेकिन मान लीजिए कोई भक्त बीमार है और एक भक्त दूसरे भक्त की सेवा कर रहे हैं, तो ये कोई पुण्य कर्म इकट्ठा करने के लिए नहीं है, अपितु ये इसलिए है ताकि ये भक्त अभी अगर बीमार हैं तो भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ, ताकि ये भक्त ठीक होकर के वापस कृष्ण की सेवा करें, कृष्ण सेवा कर सकने में सक्षम हो। तो ये कार्य जो है ये कर्म फल से बिल्कुल मुक्त है। लेकिन अगर हम इसी तरह इस भावना में किसी की कर रहे हैं कि अरे देखिए भाई मैं कितने बीमारों की सेवा कर रहा हूँ, तो उसका कर्म फल लगता है, और उस कर्म फल को भोगने के लिए हमको पूरे जगत में फिर से आना पड़ता है, चाहे वो अच्छा कर्म ही क्यों ना हो। तो इस प्रकार से हमने क्या सीखा इस डिस्कशन से, कि जब व्यक्ति समझ ले कि मैं शाश्वत रूप से कृष्ण का दास हूँ, हर स्थिति में एक्चुअली कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ, तो जानबूझ करके या पूरी समझावट से वो प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने हर कर्म को कृष्ण को समर्पित करना सीखे, और इसके द्वारा वो कर्म फल से बिल्कुल मुक्त हो जाएगा। तो ये सारा जो क्रियाओं का आधार है वो ज्ञान के ऊपर है। भगवद गीता के ज्ञान को हम प्रैक्टिकली जीवन में अप्लाई करते हैं, और ये ज्ञान का आधारभूत बात यह है कि मैं आत्मा हूँ, दूसरा चीज मैं भगवान का दास हूँ, इसलिए मेरा एकमात्र कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना। और कैसे अपने जीवन में आप हर कर्म को कृष्ण को समर्पित करते हैं, कर सकते हैं, इसके लिए आपको भक्तों से पर्सनली व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। कैसे हम सुबह उठ के मंगल आरती करें, कैसे सुबह जप करें, भगवान को भोग कैसे लगाएं, भगवान की आरती कैसे करें, और दिन के अन्य कार्यों को भी हम कैसे कृष्ण से जोड़ें, ये हमें भक्तों से सीखना चाहिए। यस्य सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जितः ज्ञान अग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितां बुधः। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। तो कर्म बंधन से मुक्त होने का एक बहुत सुंदर लक्षण ये है कि व्यक्ति इंद्रिय भोग के लिए कार्य करना बंद कर देगा। प्राय जगत में हम कार्य तभी करते हैं जब हमारे इंद्रियों के लिए वो सुख सुख वर्धन करें। तो ये बात एक भक्त जब भक्ति करते रहते हैं, कृष्ण को अपने कर्म समर्पित करते रहते हैं, तो धीरे धीरे ज्ञान उनके हृदय में स्वतः उदित हो जाता है, या अभ्यास ही हो जाता है कि इंद्रिय भोग के लिए मुझे कार्य नहीं करना है, अपितु केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। तात्पर्य देखिए, केवल पूर्ण ज्ञान ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का भाव रहता है। इससे वे यह समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है, जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया है। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वह सचमुच विद्वान है। भगवान की नित्य दासत्ता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर सकती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कर्म फल बनने का मुख्य कारण यही है कि हम अपने आप को भगवान से अलग समझते हैं, सोचते हैं कि हम भगवान से अलग भोगता हैं, इस जगत के स्वामी हैं, नियंत्रक हैं। तो जो व्यक्ति भगवद गीता को सुनता है साथ साथ हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है तो धीरे धीरे हृदय में अनुभूति स्वयं होने लगती है कि मैं कृष्ण का हूँ और कृष्ण का नित्य अंश हूँ और मेरा एकमात्र कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना। ये इंद्रिय भोग के द्वारा मेरे सुख ना तो मिला है ना मुझे आगे मिलेगा, बल्कि ये मेरे कर्म बंधन का ही कारण होगा। तो ऐसा व्यक्ति जब दुनिया में कार्य करता है वो व्यक्ति भोगों के लिए कार्य नहीं करता है। बाह्य दृष्टि से उसे लग सकता है कि वो व्यक्ति भोग के लिए कार्य कर रहा है। जैसे बहुत से लोग भक्तों पर आरोप लगाते हैं कि तुम लोग भगवान के नाम को भोग लगाने के नाम पर खुद बड़े बड़े पकवान खाते हो, लेकिन एक्चुअली ये बाह्य दृष्टि है। भक्त लोग प्रेम से भगवान को कुछ पकवान बना के देते हैं और उसके बाद भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, उससे उनका जीवन शुद्ध हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है। उसी प्रकार से लोग सोचते हैं कि भक्त लोग तो कार में घूम रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, वहां घूम रहे हैं, लेकिन भक्तों के कार में घूमने का उद्देश्य है भगवान की वाणी का प्रचार करना। पैदल हम कितनी देर घूम घूम सकते हैं? तो एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति उसी कार में घूमता है अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, और उसी कार में भक्त जाते हैं भगवान के प्रचार के लिए। तो इसलिए कोई कर्म बंधन लगने की बात नहीं है। मैं थोड़े थोड़े उदाहरण दे रहा हूँ। लोग स्नान करते हैं अगर वो करें तो, ताकि उनका शरीर अच्छा रहे, सुंदर दिखे। लेकिन भक्त भी स्नान करते हैं ताकि मंगल आरती में जाने की योग्यता हो, भगवान की सेवा करने की योग्यता हो। तो ये सारे कार्य इस जगत में हम लोग करते हैं वो सब कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, ऐसे कहा जाता है अनुसंगिक भक्ति। भक्ति के क्रियाओं के लिए जिन कार्यों को किया जाता है वो भी भक्ति हो जाता है, और इस प्रकार से पूरे दिन पूरा जीवन जो है वो कृष्ण, सारे कर्मों को हम कृष्ण से जोड़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता है जो हमें भक्तों के व्यक्तिगत मार्गदर्शन के द्वारा ही मिल पाती है। तो आगे हम चर्चा बढ़ाएंगे, अब यहीं रुकते हैं। हरे कृष्णा।